पृष्ठ 79। कहानी मोहरा रस्सा। लेखिका दीपक शर्मा। वरिष्ठ कहानीकार दीपक शर्मा बड़े चुटीले अंदाज में खेल खेल में एक पैनी और गहरी थीम उठाती हैं। कई स्तरों पर खुलती इस कहानी का चरम बिंदु प्रतिरोध का नया तेवर लेकर सामने आता है। सूक्ष्म दिखती बातों को अपनी पैनी नज़रों से ताड़ने वाली लेखिका ने इस कहानी के जरिए स्त्री पुरुष संबंधों को कुछ इस तरह गूंथा है कि बाहर से छोटे कलेवर वाली इस कहानी में एक साथ कई अर्थ ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। मेरी टविट अपनी पूरी उड़ान नहीं भर रही, आवाज़ भी इसकी बीच ही में रुक रही है। बेटा मुझे अपनी इलेक्ट्रिक चिड़िया दिखा रहा है, जो अभी पिछले ही माह मैंने उसे उसके 5वें जन्मदिन पर लेकर दी है, जिसे चाबी भरने पर अपने पूरे फंक फैला लेने होते हैं और 2 बार टविट टवैट बोलना होता है। इसकी चाबी लाओ, मैं बेटे की ओर हाथ बढ़ाता हूँ, चाबी भरता हूँ और चौंक जाता हूँ। टविट टवैट दोहराने की बजाय वह एक ही बार टिट फॉर टैट चटचटा कर छुपा गई है। इंद्रधनुषी पंख भी उसके आधे ही फैल कर रुक गए हैं, बाकी आधे उसकी देह पिछ में सिमटे रहे हैं। देखें, पास बैठी पत्नी उसे अपने हाथ में थाम लेती है। उसकी अधखुली लाल चोंच पर, गहरी नीली आंखों वाले उसके शीर्ष पर, पीली उसकी कलगी पर, भूरे उसके चारों पैरों पर, हरी उसकी छाती पर, बैगनी उसके कान वाले हिस्से पर, नारंगी उसके पेट पर और आसमानी उसके पुछल्ले पर बारी बारी से हाथ फेरती है और फिर उसमें चाबी भरती है। टविट इस बार भी अपनी उड़ान और चहक में ढिलाई दिखाती है। टविट टवैट दोहराती नहीं, एक ही बार टरटराती है टिट फॉर टैट। अरे पत्नी उछलती है, यह तो डच भाषा का डिट और डैट बोल रही है। डिट और डैट, बेटा अपनी माँ का मुंह ताकता है, मतलब दिस फॉर टैट। पत्नी हंस पड़ती है, यह दो वह लो, तुम भी बोलो डिट और डैट। डिट और डैट, बेटा यंत्रवत बोला बोल देता है अनिष्ठापूर्वक। पृष्ठ 80। देखें, पत्नी को नया खेल सूझ लिया है। वह बेटे की टविट में दोबारा चाबी भरती है, इस बार शायद यह कोई और भाषा बोल उठे। पत्नी इस पब्लिक स्कूल में डच और फ्रांसीसी भाषाओं की अध्यापिका है, जिसके परिसर में हमारा यह क्वार्टर है। 6 वर्ष पूर्व हम दोनों ही ने इस स्कूल में लगभग एक साथ यहाँ नौकरी शुरू की थी और उत्तरवर्ती 2 माह के अंदर ही झट मंगनी पट विवाह रचा डाला था, आवासीय सुविधा पाने हेतु। स्कूल के एक क्वार्टर केवल विवाहित जोड़ों ही के लिए रक्षित किए गए हैं। इस बार तो यह फ्रांसीसी बोल रही है। टविट की टिट फॉर टैट पर पत्नी फिर उछल ली है। ता पूर्ता, बेटा पूछता है। सो मच, पत्नी अपने हाथ फैलाती है और समेटती है, फिर फैलाती है और फिर समेटती है। जितना दोगे उतना पाओगे, बोलो सो मच फॉर सो मच। बेटा मुस्कुराता है, उसे पत्नी के इस खेल में मज़ा आने लगा है। मुझे दो, पत्नी के हाथ से बेटे की टविट मैं अपने हाथों में लौटा लाता हूँ। बेटे का ध्यान अपने वश में रखना चाहता हूँ मैं, उसकी मुस्कुराहट का अनन्य संचालन करना चाहता हूँ मैं। उसकी टविट में चाबी भरता हूँ और अपनी हथेली पर उसके पैर जमा देता हूँ। टविट के पंख इस बार भी आधे खुलकर भिड़ गए हैं और इस बार भी वह तड़तड़ाती है टिट फॉर टैट। यह लातिनी भाषा बोल रही है, मैं अकड़ लेता हूँ। इस पब्लिक स्कूल में मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ और अंग्रेजी शब्दों एवं मुहावरों की उत्पत्ति अक्सर लातिनी शब्दों से जोड़ा करता हूँ, यथोचित सहसंबद्धता के अनुरूप। गिड प्रो को, मेरी भेंट के तुल्य अनुकल्प लाओ, बोलो बेटे, बोलो किड प्रो को। किड प्रो को, हंसकर बेटा मेरी गोदी में आन बैठता है। किड प्रो को अंग्रेजी में इसका समानार्थक एक और पर्याय भी है, मायर फॉर मायर, जिस माप में दो उस माप में लो, पत्नी कहती है। शेक्सपियर का एक नाटक भी है मायर फॉर मायर। मैं कहता हूँ, शेक्सपियर के लगभग सभी मुख्य नाटक मुझे कंठस्थ हैं। कुछ एक इस पब्लिक स्कूल में आने से पहले के 3 वर्षों के दौरान देहली रंगमंच पर अपनी नाट्य कला के प्रदर्शन एवं परीक्षण के अंतर्गत कुछेक इसी पब्लिक स्कूल में उनकी सार्वजनिक मंचन के प्रभारी होने के कारण और कुछेक के यहाँ की विभिन्न जमातों के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित होने के नाते उसमें एक एंजेलो है और एक मैरियाना है और एक सुंदर प्रेम गीत टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे दैट सो स्वीटली वर फॉरस्वेन एंड दोज आईज द ब्रेक आवर डे। ले जाओ अरे ले जाओ उन होठों को जिनके द्वारा मनोहर मगर झूठी कस्में खाई गईं और उन आँखों को भी जो भोर प्रारंभ होते ही ब्रेक ऑफ दाय सॉन्ग अपना गीत रोक लो। अधीर होकर पत्नी मुझे इस गीत के उत्तरवर्ती मैरियाना के शब्द दोहरा कर रोक देती है। उस प्रॉब्लम प्ले समस्या मूलक नाटक का हमारे वर्तमान प्रसंग से है कोई मतलब? मैंने तो मेयर फॉर मेयर का उल्लेख आपके किड प्रोको के समानार्थक प्रसंग में किया था और उसी प्रसंग में मुझे एक और मुहावरा याद आ रहा है अ रोलैंड फॉर एन ओलिवर। रोलैंड और ओलिवर ही की बात तो मैं भी करने जा रहा था। मैं झल्लाता हूँ अपने नाटक हेनरी सिक्स में शेक्सपियर लिखता है इंग्लैंड ऑल ओलिवरेज एंड रोलैंडस ब्रेड। इंग्लैंड अपने सभी नागरिकों को एक समान बनने की शिक्षा दिलाता है और इस वाक्य का स्रोत ब्रितानी इतिहासकार एडवर्ड हॉल का वह उल्लेख है जो उसने शेक्सपियर से 100 वर्ष पूर्व अपनी पुस्तक में लिखा था वट टू हैव एरोल्ड टू रिसिस्ट एन ओलिवर ही सेंट सोलम एम्बेसडरस टू द किंग ऑफ इंग्लैंड ऑफरिंग हिम हिज डॉटर इन मैरिज। एक ओलिवर के मुकाबले में एक रोलैंड को खड़ा करने के वास्ते उसने ब्रिटेन के राजा के पास अपनी बेटी का विवाह प्रस्ताव अपने औपचारिक राजदूत के हाथ भेजा था और एडवर्ड हॉल का यही उस समय का फ्रांसीसी राजा है। लेकिन एडवर्ड हॉल के रोलैंड और ओलिवर उससे भी पहले के हैं। पत्नी मुझे फिर टोक देती है या मानकर चलती है फ्रांसीसी संसार पर एकमात्र वही प्रामाणिक अधिकार रखती है। वे फ्रांसीसी राजा शार्लेमेन 746 से 814 के दो शूरवीर सामंत थे जो हर बात में समानता रखते थे। जो भी महाकार्य रोलैंड कर सकता था हूबहू वही सब ओलिवर भी कर लेता था। एक बार राइन के एक टापू में वे दोनों एक दूसरे से 5 दिन तक लगातार युद्धरत रहे थे किंतु कोई भी दूसरे को हरा नहीं पाया था। तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा की तरह बेटे को संबोधित कर मैं पत्नी पर कटाक्ष करता हूँ वे भी एक दूसरे को कहाँ हरा पाते हैं। हम रोलैंड और ओलिवर कैसे हुए? पत्नी फिर मंच के केंद्र में आ खड़ी होती है। स्कूल की दुनिया में बेशक हम एक जैसी क्षमताएं रखते हैं एक समान तनख्वाह पाते हैं लेकिन घर के काम में आप मेरी बराबरी नहीं कर सकते। आप गैस नहीं चला सकते सब्जी नहीं काट सकते आटा नहीं सान सकते चपाती नहीं बेल सकते कपड़े नहीं धो सकते कपड़ों पर लोहा नहीं कर सकते। अब नया राग कौन अलाप रहा है? एक क्रोधोन्माद मेरे अंदर उतर रहा है टेढ़े मेढ़े कौन बह रहा है प्रसंग से फिर कौन भटक गया है। नाटकीय अंदाज में पत्नी मेरी हथेली से बेटे की तवीट उठाती है और उसमें चाबी भरकर बेटे को बीच वाली मेज पर आने का निमंत्रण देती है। देखें मेज पर पहुंचकर तुम्हारी तवीट क्या बोलती है। बेटा मेरी गोदी से उतर लेता है और अपनी माँ के पास जा खड़ा होता है टिट फॉर टैट। मेज से तवीट चीखती है मेरा लहू अब उबल रहा है टिप फॉर टैप। पत्नी बेटे को एक हल्का टहोका देती है और हंसती है अब तुम मुझे धक्का दो टिप फॉर टैप। तुम्हारे झटके की जगह मेरा झटका बोला टिप फॉर टैप। पृष्ठ 81 टिप फॉर टैप। बेटा हंसता है और अपनी माँ की टांगों से धक्का देने की मुद्रा में जा चिपकता है। उत्साह से भरकर पत्नी बेटे को मेरी बगल में ला बिठाती है और अपनी आँखों की पुतलियाँ फैलाकर अपने हाथ खोलकर बेटे के चेहरे पर ले जाती है एन आए फॉर एन आए। तुम मेरी एक आँख फोड़ोगे तो मैं तुम्हारी आँख फोड़ डालूँगी अ टूथ फॉर अ टूथ। तुम मुझे चबाओगे तो मैं तुम्हें चबा जाऊँगी। अपना मुंह खोलकर पत्नी अपने दांत निकालती है और चिंघाड़ती है। उसकी चिंघाड़ में मैं एक ललकार सुन रहा हूँ एक महाघोष। मैं बलवती हूँ तुम्हें बराबर की टक्कर दे सकती हूँ तुम्हारे हर जोड़ का तोड़ रखती हूँ। मेरा लहू मेरे अंदर चिंगारियाँ छोड़ता है ताबड़तोड़ और मेरे हाथ उठकर पत्नी पर जा बरसते हैं जोरदार और जबरदस्त। यह क्या है पत्नी चौंकती है, उसके मुंह से लहू टपकने लगा है। तुम्हारी नारेबाजी का जवाब, तुम्हारी बराबरी का हिसाब, बेटा रोने लगा है। पत्नी से उलझ रहे अपने हाथ मैं तत्काल रोक लेता हूँ और उन्हें बेटे की ओर ला बढ़ाता हूँ, विपरीत उद्देश्य के संग। बेटे को अपनी बाहों के घेरे में लाकर चुमकारता हूँ, पुचकारता हूँ। तुम रो नहीं बच्चे, चलो मेरे साथ चलो, तुम्हारी टबिट की दुकान पर चलते हैं, वहाँ दुकानदार इसकी मरम्मत कर देगा, यह ठीक हो जाएगी और अपना यह चरचराना छोड़कर फिर से टबिट टबैट गाने लगेगी। 2035 सेक्टर सी, अलीगंज, लखनऊ, 24। लघु कथा जब मैं स्त्री हूँ, रंजना जायसवाल। मैं स्त्री हूँ और जब मैं स्त्री हूँ तो मुझे दिखना भी चाहिए स्त्री की तरह, मसलन मेरे केश लंबे, स्तन पुष्ट और कटी छीड़ हो, देह हो नपी तुली इतनी कि इंच कम न छटाक ज़्यादा, बिल्कुल खूबसूरत डस्टबिन की तरह जिसमें डाल सकें वे देह मन दिमाग का सारा कचरा और वह मुस्कुराता रहे, प्लीज यूज मी। मैं स्त्री हूँ और जब मैं स्त्री हूँ तो मेरे वस्त्र भी ड्रेस कोड के हिसाब से होने चाहिए, जरा भी कम न महीन, भले ही हो कार्यक्षेत्र में कोई, आखिर मर्यादा से ज़्यादा क्या है स्त्री के लिए, और मर्यादा वस्त्रों में ही होती है। मैं स्त्री हूँ और जब मैं स्त्री हूँ तो मुझे यह मानकर चलना चाहिए कि लक्ष्मण रेखा के बाहर रहते हैं, सिर्फ रावण इसलिए घर के भीतर अपनों द्वारा चुपचाप लुटती रहना चाहिए, क्योंकि स्त्री की चुप्पी से ही बना रहता है घर। मैं स्त्री हूँ और जब मैं स्त्री हूँ तो मुझे देवी की तरह हर हाल में आशीर्वाद की मुद्रा में रहना चाहिए, लोग पूजें या जानवर गोबर करें, ऐतराज नहीं करना चाहिए, अच्छी नहीं लगती देवी में मनुष्य की कमजोरियाँ। मैं स्त्री हूँ और जब मैं स्त्री हूँ तो मुझे उन सारे नियमों व्रतों परंपराओं का अंधानुकरण करना चाहिए जिसे बनाया गया है हमारे लिए, बिना यह सवाल उठाए कि हमारे नियामकों ने स्वयं कितना पालन किया इन नियमों का, सवाल करने पर हर्ष होगा गार्गी या द्रौपदी सा। मैं स्त्री हूँ और जब मैं स्त्री हूँ तो मुझे स्वतंत्र प्रेम का अधिकार नहीं है, करना होगा उसी से प्रेम जिसे वे चुनेंगे हमारे लिए, उनके प्रेम प्रस्तावों को स्वीकारना जरूरी है हमारे लिए, पर हमारी पहल पर वे काट लेंगे हमारे नाक कान। मैं स्त्री हूँ और जब मैं स्त्री हूँ तो मुझे अपनी कोख पर भी अपना अधिकार नहीं मानना चाहिए, उनके वारिस के लिए उनके नियत अनचाहे बूढ़े पुरुष से संसर्ग पुण्य होगा, भले ही भय से मुदनी पड़े आँख और देह पीली पड़ जाए, परिच्छित पुरुष से गर्भपाप होना होगा, इतना कि त्यागना होगा उसे कर्ण और कबीर की तरह। मैं स्त्री हूँ और जब मैं स्त्री हूँ तो अपने लिए कोई क्षेत्र चुनना या महत्वाकांक्षी होना पाप और स्वतंत्र राय या इच्छा अपराध है, ऐसे ही नहीं खारिज है कुछ स्त्री नाम सदनामों से। मैं स्त्री हूँ और जब मैं स्त्री हूँ तो नहीं है अपनी देह भी मेरी, वह ढलेगी उनके सांचों में, पलेगी उनके नियमों से, जी जाएगी उनकी मर्जी से, वरना वे कहेंगे उच्छृंखल बिगड़ी बदनाम और स्वच्छंद हमें। वे भले ही बनाते रहें हमारे न्यूड देह उघाड़ू ड्रेसेस, ब्लू फिल्में बेचते रहें बाजार में, यूज और थ्रो का कल्चर अपनाते रहें, ईजाद करते रहें नई नई गालियाँ और शोषण के तरीके एक साथ, वे सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वे स्त्री नहीं हैं, और जब वे स्त्री नहीं हैं तो कुछ भी सोच सकते हैं, कह सकते हैं, कर सकते हैं। पृष्ठ 82 कहानी लकीर, लेखिका उर्मिला शिरीष। समकालीन दौर की महत्वपूर्ण कहानीकार उर्मिला शिरीष की यह कहानी मौजूदा सामाजिक व्यवस्था की जड़बद्ध परंपराओं और पितृसत्तात्मक प्रतिबद्धताओं के भीतरी कुहासे को निर्ममता पूर्वक भेदती है। प्रचलित फार्मूला से अलग खड़ी यह कहानी परंपरागत पारिवारिक सांचे ढांचे पर निर्ममता से प्रहार करते हुए संपत्ति पर बेटी का हक जैसे सवाल को पैनेपन से उभारती है। रिश्तों और विश्वासों के बिखरने के पीछे छिपे लाभ हानि को तौलती रचनाकार ने लड़की के पक्ष को पूरी विश्वसनीयता के साथ रखा है। आइए आइए, मैंने कितनी बार आपको फ़ोन लगाया और खबर भिजवाई थी कि एक बार आकर आप हमारी दुकान देख लें। प्रतिभा के चेहरे पर खुशी और उत्साह का भाव छलक आया। अपनी खुद की दुकान होने की गर्वानुभूत, अपनी पहचान का गौरव, अपने आत्मनिर्भर होने का अभिमान। लेकिन क्षणों बाद ही उसका चेहरा बुझ गया, उसकी उजली हंसी गायब हो गई, आंखें छलछला आईं। मुझसे सामना होते ही वह भावुक हो उठी। भावुकता की वह पतली रेखा उसकी गोल नाक से होती हुई आंखों से बहने लगी। इतने वर्षों का यह सिला मिला मुझे इस तरह घर से बेइज्जत करके निकालकर, मुझे फिर वहीं से शुरुआत करनी पड़ रही है। आपने तो अपनी आंखों से देखा है सब कुछ, कितना मुश्किल होता है स्वयं को समझाना। मैं इनका लड़का होता तो क्या ये उसे सेटल नहीं करते? टप टप टपकते आंसुओं को उसने साड़ी के पल्ले से पोछा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में लालिमा उतर आई थी। उसका पति स्टूल पर बैठा था। मैंने नज़र उठाकर देखा, एक छोटी सी उदास सूनी दुकान, सीधी सपाट, रैक्स अलबत्ता बनवा ली थी पर आधे से ज़्यादा खाली पड़ी थी। एक तरफ कोर्स की किताबें थीं, दूसरी तरफ अन्य विषयों की हिंदी अंग्रेजी की मिली जुली किताबें, बहुत ही सस्ते वाले पेन पेंसिल रबर बच्चों के कंपास। देखिए, हमारे पास माल भी नहीं है, न नकद उठाने के लिए पैसा, न उधारे के लिए विश्वास। जो प्रकाशक वहाँ किताबें देते थे उनको मना कर दिया है। हमारे पास जो जमा पूंजी थी वह दुकान खरीदने में लगा दी। उसकी 2 वर्षीय बच्ची उसका हाथ पकड़कर खींच रही थी और पति उसको बहलाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। गर्मी और उमस के कारण वहाँ बैठना असह्य हो रहा था। पृष्ठ 83। दुकान तो अच्छी जगह पर है, मैंने बेमन से कहा। अच्छी जगह से क्या, चलनी तो चाहिए। यहाँ पीछे वाली लाइन में कम ही लोग आते हैं, उसने अफसोस जताते हुए कहा। आजकल शो बिजनेस का जमाना है, एक से एक शानदार दुकानें हैं, उनके सामने हमारी यह दुकान। तुम्हारा नाम तो है, तुमने हिम्मत नहीं हारी और विश्वास रखा। अंतिम विजय तुम्हारी ही होगी। जीतने के लिए तुम्हें लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। निश्चय ही यह कठिनाई भरा समय है, कठिन चुनौतीपूर्ण। तुम्हें लड़ने के लिए तैयार रहना ही होगा। जीतना तुम्हारे लिए चुनौती है। क्या तुम नहीं जानती कि तुम आधी पराजित तो उसी समय हो गई थी जब तुम्हारे जन्म के बाद बेटे की आशा में एक और बेटी आ गई थी। जीत कर मिलेगा भी क्या, उन्होंने तो इतना बदनाम कर दिया है कि। वह मेरी बात को काटते हुए बोली और फफक कर रो पड़ी। हमेशा खिलखिलाती हुई प्रतिमा को यूं रोता देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जानती थी उसके भीतर तूफान ठहरा हुआ था। वह अपना दुख, क्षोभ, अपमान और पराभव को किसी के साथ बांटना चाहती थी। अपने पक्ष में खड़े व्यक्ति के सामने अपना विश्वास लौटाना चाहती थी। वर्षों से जानती हूँ मैं प्रतिभा को। बीए के बाद आगे की पढ़ाई स्थगित करके अपने पैतृक व्यवसाय में पूरी तरह से स्वयं को लगा दिया था। उसका मानना था कि एमए करके भी वही काम करना है तो क्यों न मैं अपना बिजनेस ही करूं? पापा कब तक और कितना करेंगे? किताबों के सिलसिले में ही मेरा उससे परिचय हुआ था। पूरे शहर की गिनी चुनी नामचीन दुकानों में से एक दुकान। कोई भी पुस्तक चाहिए हो, प्रतिभा से एक बार कहना भर होता था। वह अपनी सीट पर बैठे बैठकर ही नौकर को हिदायत देती। यहाँ नहीं, वहाँ, वहाँ नहीं, तीसरी रैक पर, ऊपर जा। अरे बुद्धू, एक किताब नहीं मिलती। अंकल ठहरिए, मैं लाती हूँ। मैडम, आप लिखवा दीजिए, मैं फ़ोन करके आपको बता दूँगी। बीच बीच में ही वह हंसती जाती, बातें करती जाती। उसके हाथों में जादू था। उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता था। कौन सी किताब कहाँ रखी है उसको मुँह जबानी याद रहता था। दौड़ दौड़ कर वह काम किया करती थी। बिल काटना, किताबें रखवाना, आर्डर लेना, सारे ग्राहकों से डील करना और कोई भी ग्राहक खाली न लौटे, इस बात का खास ख्याल रखना। और आज उसी प्रतिभा को यूं व्यस्त हाल में देखकर सचमुच मेरा मन क्षोभ से भर उठा। तुम्हारे जाने के बाद गुप्ता जी का क्या होगा, मैं उसे अक्सर छेड़ती थी। मैं कहाँ जाऊँगी, वह हंसते हुए कहती। शादी नहीं करोगी? अभी तो नहीं, छोटी बहन पढ़ रही है। पहले उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए, शादी इसी शहर में करूंगी। पापा को यूं अकेला छोड़कर थोड़ी न जाऊंगी। वह अपने पापा को स्नेह से देखती हुई कहती, दुनिया में उसके लिए पापा से बढ़कर कोई न था। मैंने उसका नाम मजाक मजाक में सेठानी रखा दिया था, पढ़ी लिखी सेठानी। और एक दिन खबर मिली कि प्रतिभा की शादी हो गई है। अब क्या होगा? मुझे प्रतिभा के बिना दुकान सूनी सूनी लगती। दुकान की सारी रौनक ही जैसे खत्म हो गई थी। उसकी खिलखिलाहट भरी गूंजती हुई आवाज़, छोटी कदकाठी के साथ ऊपर नीचे दौड़ती वह। दुकान में पहली बार मैंने खालीपन देखा था। शायद मेरी तरह और भी लोग उसकी कार्यकुशलता के आदी हो चुके थे, और उसके न होने पर काम की गति में जो अवरोध आ गया था वह प्रतिभा के अलावा कौन ताड़ सकता था। दुकान वही थी, किताबें वही थीं, लेकिन प्रतिभा की अनुपस्थिति ने उसके अस्तित्व को हिला दिया था। हर व्यक्ति का अपना अस्तित्व ही मायने रखता है, वह विचार मेरे मन को बार बार उद्वेलित कर रहा था। बिजनेस ठप्प हो गया है, पर क्या करें, नया लड़का रखा है, सीखने समझने में वक्त तो लगेगा। अपने बिजनेस के पीछे उसे कुंवारी थोड़े ना बिठा सकते थे। बहुत चाहा कि लड़का यहीं का मिल जाए, पर संयोग ही ना बना। गुप्ता जी उदास और थके हुए लग रहे थे। हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, बड़ी दिक्कत होती है, उसे सब कुछ याद रहता था। वे प्रतिभा की कमी को गहरे तक महसूस कर रहे थे। पिता को व्यवसाय में लगातार घाटा हो रहा था। ऐसा नहीं था कि काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे थे या कोई इतनी जल्दी सीख नहीं सकता था, लेकिन प्रतिभा जिस तरह से काम करती थी और करवाती थी, वह हुनर, वैसी तत्परता किसी में न थी। जब तक लड़के किताब ढूंढ कर लाते, तब तक पता चलता ग्राहक चला गया होता। तेज रफ्तार से भागते इस समय में कोई भी इंतजार नहीं चाहता था, ले इसीलिए लोगों का आना अपेक्षाकृत कम हो गया था। इधर प्रतिभा अपनी ससुराल में खुश थी। पति नौकरी में था, उसके लगातार टूर रहते थे। अपने इस नए जीवन को वह सचमुच एंजॉय कर रही थी। बेटा कुछ दिन के लिए आ जा, हर हफ्ते पिता का फोन पहुंच जाता। पापा यहाँ भी तो देखना पड़ता है, बार बार आना जाना पैसे का नुकसान होता है। ये लोग भी सोचेंगे कि अपने पापा का नुकसान दिखता है। मैं बात करूँ, इंदौर कौन सा दूर है? पापा मैंने तभी कहा था कि मेरी शादी बाहर मत करो, आप पर काम का बोझ आ पड़ा है, मुझे आपकी चिंता रहती है, अकेले कैसे संभालते होंगे। मैं समझ सकती हूँ पापा, ऐसा कर तू यहीं रहने का मन बना ले, बात करके देख घर वालों से। पापा यह सब इतना आसान नहीं है, मैं अपने कारण राकेश को वहाँ बुलाऊं, उनके पेरेंट्स और यह घर, वे सब क्या करेंगे? माता पिता को वहीं रहने दे, तू यहाँ एक छोटा सा फ्लैट ले ले, राकेश यहाँ आते जाते रहेंगे। पृष्ठ 84। पापा आपने तो कह दिया, पर सोच कर देखो क्या इतना आसान है सब कुछ। 6-8 महीने यूं ही चलता रहा। प्रतिभा 15 दिन ससुराल में रहती तो 15 दिन मायके में। आते ही वह दिन रात दुकान में झोंक देती स्वयं को। पुराना हिसाब किताब, किताबों की व्यवस्था, सारी चीजें पापा को समझाती। घाटा देखकर उसका मन दुखी होने लगता। किताबों का बेतरतीब ढेर, न कोई ढंग से जमाता, न सुव्यवस्थित करने की कोशिश नजर आती। अकाउंट्स के लिए अलग से लड़का रख लो, वह पापा को समझाती। एक की जगह दो लड़के रखो ताकि कोई ग्राहक लौटे नहीं। एक नहीं, 4 लड़के रख लें, पर कोई तेरी तरह काम कर पाएगा? तुरंत फुरत किताबें देना, ग्राहकों को बताना कि कौन सी किताबें कहाँ है। पापा असहाय होकर कहते। दो नावों पर सवार प्रतिभा का जीवन अस्त व्यस्त होने लगा था। मैं बात करके देखूं, बस में बैठाते हुए गुप्ता जी ने कहा, पापा आपको सबके साथ बात करनी होगी। अच्छा बता, तेरा पूरा परिवार यहीं शिफ्ट हो जाए तो वहां क्या रखा है? उनका मन टटोलना होगा, उन्हें आश्वस्त करना होगा। बरसों से जमी जमाई फैमिली क्या अपनी गृहस्थी छोड़कर यहाँ आ पाएगी? मकान लेना पड़ेगा, जरा भी परेशानी होगी तो सारा दोष आपके मत्थे मढ़ देंगे। बात बनती बिगड़ती रही, प्रतिभा उसी तरह आती जाती रही। हाँ, इस बीच वह गर्भवती हो गई थी, इसलिए उसका आना जाना कम हो गया था। गुप्ता जी को अच्छा बहाना मिल गया था कि पहली डिलीवरी मायके में होनी चाहिए, कहकर वह अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन प्रतिभा के लिए ससुराल का माहौल कुछ गर्म और तनावग्रस्त हो गया था। पापा टेंशन में हैं। क्यों? वह चाहते हैं कि हम सब वहीं सेटल हो जाएं। दो रिश्तेदारों का साथ परिवार को मजबूती ही देगा, इसलिए कि तुम्हारे बिना उनकी दुकान नहीं चल रही है, राजेश ने हंसते हुए कहा। मुझे भी तो काम करना होगा, इससे अच्छा वहीं काम करूं, मेरी रुचि का काम होगा। पापा चाहते हैं कि तुम भी एक टूर वाली नौकरी छोड़कर उन्हीं के साथ आ जाओ, जैसे जीजाजी करते हैं। तुम्हारे जीजाजी इंजीनियर नहीं हैं। मेरा दुकान पर बैठना क्या तुम्हें ठीक लगेगा? मैं अपनी लगी लगाई नौकरी छोड़ दूं? भले ही मैं प्राइवेट कंपनी में हूं, पर इसमें मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट तो है। वे इसी बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, नया शोरूम खोलना चाहते हैं। हो सकता है आगे चलकर हम अपना पब्लिशिंग हाउस खोल लें, तो तुम करो उनके साथ काम, मुझे क्या लेना देना, राजेश ने अपनी बात रखते हुए कहा। वह पिता पुत्री के बीच नहीं आना चाहता था, लेकिन पिता पुत्री के तनाव उसके जीवन पर हर पल अपना प्रभाव डाल रहे थे। कहीं कोई बात थी जो प्रतिभा को पिता की तरफ खींच रही थी। अंततः प्रतिभा का पूरा परिवार भी यहीं आ गया और एक बार फिर प्रतिभा दुकान पर अपनी चिर परिचित मुद्रा में बैठी नजर आने लगी। आसपास किताबों का ढेर और उनके बीच छोटा सा सिर निकाले मुस्कुराती आवाजें लगाती किताबों के संसार में खोई प्रतिभा। उसकी खनकती आवाज़ दुकान में गूंजने लगी थी और दुकान फिर व्यवस्थित नजर आने लगी थी। उसकी नाजुक उंगलियों का स्पर्श पाकर रंग बिरंगी विभिन्न आकार प्रकार की किताबें जादुई आलोक बिखेरती अभिभूत करती नजर आने लगी थीं। लगता था प्रतिभा और किताबें एक दूसरे के लिए बनी हैं। संभवतः 3-4 महीने का अंतराल आया होगा जब मैंने उसे किताबों के ढेर में से किसी किताब को ढूंढते हुए देखा था। फिर आज यह क्या देख रही हूँ? तेजी से बढ़ते मेरे कदम एकाएक थक गए। क्या मैं किसी और दुकान में आ गई? मैंने सिर उठाकर पुनः दुकान का बोर्ड पढ़ा। दुकान तो यही है। दुकान के बीच एक किताबों की दीवार बना दी गई है। दुकान दो हिस्सों में बटी थी। मुश्किल से निकलने का रास्ता बनाया गया था। देखती क्या हूँ, एक तरफ प्रतिभा बैठी हुई थी, दूसरी तरफ उनकी माँ। महाभारत का यह फीमेल ड्रामा। यह क्या, मैं स्तब्ध थी। करीने से सजी रैक अब ऊबड़ खाबड़ दीवार बन गई थी। पृष्ठ 85। बंटवारा। प्रतिभा जोर से हंसती। उसकी हंसी में व्यंग था, खोखलापन था, गहरी वेदना थी। यह कैसा बंटवारा, किसके बीच बंटवारा? निकट भविष्य में युद्ध होने वाला है, मेरे मन में खटका हुआ। मेरे और पापा के बीच वह जोर से हंसी। क्या बात करती हो, मजाक कर रही हो? सच कह रही हूँ मैडम, इधर का हिस्सा मेरा, उधर पापा का। क्यों? मैं अभी आश्चर्यचकित थी। शादी जो हो गई है, मैं पराई हो गई हूँ, मेरा परिवार अब वो है। मैं तो सदा से पराए घर की थी, इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, लेकिन आज सबसे बड़ी सच्चाई यही है। पैसे का मामला ऐसा ही होता है, उसमें सगे भी पराए हो जाते हैं। संपत्ति के लिए लड़ने वालों का मैं मजाक बनाती थी, नफरत करती थी, पर आज उसी दलदल में बैठी हूँ। वह बड़े बुजुर्गों की तरह बोल रही थी। लेकिन नौबत यहाँ तक कैसे पहुँची? पापा को हर बात में हिसाब चाहिए होता, बात बात में टोका टाकी करने लगे। अब मैं पापा की आज्ञाकारी बेटी नहीं रही थी। जब इतना ही अविश्वास है तो साथ में काम करना बेकार। पहले तो जीत करके जोर देकर यहाँ बुलवा लिया, फिर कहते हैं कि नहीं करवाना काम। अजीब तमाशा है। मैंने कहा मेरा हिस्सा दे दो, मैं अपने काम के साथ आपका काम भी संभाले रखूंगी। छोटी सी कुर्सी पर धंसी बैठी प्रतिभा की आंखों के चारों ओर काले गड्ढे पड़ गए थे। चेहरा पिचका हुआ लग रहा था, उसका पेट निकला हुआ था और बात करते हुए भी वह हाँफ रही थी। छोटा सा पंखा उसके सिर पर चल रहा था, पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थीं। इन दिनों उसे आराम की जरूरत थी, पर वह अपनी शक्ति से ज़्यादा काम कर रही थी। मैंने सिर्फ स्कूल कॉलेज की किताबें ली है, मुझे खामोश देखकर वह बोली। लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से आती थी यहाँ पर। मैं हूँ तो, वह फिर खिलखिलाकर बोली अपनी व्यथा छुपाते हुए। लगा बादलों के टुकड़े उसकी आंखों में ठहर गए हैं। हाँ, अब मैं उधर जाकर आपके लिए किताबें नहीं निकाल सकती। भारत पाक की सीमा रेखा बना दी है पापा ने, मैं क्या करूँ? उसका गला भर आया था। उसने अपनी बादामी हो गई पलकों से आंसुओं को ढांप लिया। इतनी सख्त पाबंदी? बिल्कुल, इंसान का आत्मसम्मान भी कुछ होता है या नहीं, मम्मी संभाल तो रही हैं। पारिवारिक विवाद तो सुने थे, भाई भाई में, पिता पुत्रों में, कानूनी लड़ाइयाँ भी सुनी थी, पर पिता पुत्री के दरमियान व्यावसायिक विवाद मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। प्रतिभा की आत्मीयता, विनम्रता, काम के प्रति समर्पण भाव मेरे लिए वहाँ जाने का कारण था, अन्यथा पुस्तकें तो कहीं से भी खरीदी जा सकती थीं। दूसरी तरफ गई तो देखा ऊंची सी कुर्सी पर उसकी माँ विराजमान थी। चौड़ा भरा हुआ चेहरा, ऊंचा माथा, बड़ी सी बिंदी, सीधा पल्लू, तनाव से खिंचा गोरा चेहरा, कसी हुई चूड़ियाँ और अंगूठियों से भरी उंगलियों में थमी कलम जो बार बार इधर उधर गिर जाती थी। ग्राहक किताबों के बारे में पूछते तो वह लड़के पर हुक्म चला देती या स्वयं देख लेने का आग्रह करती। लड़का किताबें ला कर देता, फिर वह बिल बनाती जिसमें कमीशन का हिसाब गड़बड़ा जाता। ग्राहक उन्हें खुद समझाता, हिसाब बनवाता, फिर वह लॉक वाली टेबल की ड्रायर खोलती, आराम से पैसे निकालती, रखती या वापस करती। इतनी देर में ग्राहक ऊब कर समय बर्बाद हो गया सोचकर 10 बार इधर उधर देखता। जल्दी करिए, कहता हुआ झुंझलाता, गुप्ता जी कहाँ हैं? मैंने अस्त व्यस्त बिखरी किताबों की तरफ छोक भरी निगाहें फेंकते हुए पूछा। बीमार हैं? क्या हो गया? बस ऐसे ही बुखार, कमजोरी, रात दिन काम में लगे रहते हैं, आँखों में भी कुछ तकलीफ है। प्रतिभा संभाल लेती थी तो आप लोगों को आराम था। मेरी इस बात से वह एकदम सतर्क हो गई, फिर कुछ रुक कर बोली, अब तो उसे अपना अपना दिखता है, सियानी हो गई है, ससुराल वाले सगे हो गए हैं, माँ बाप का क्या, मरे या जिए। वह क्षोभ तथा वेदना से भरकर जोर जोर से खिसिया कर बोले जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि माँ का हृदय अपनी उपेक्षा से दुखी था या प्रतिभा द्वारा अपने ससुराल वालों का सपोर्ट करने से। वह तो अच्छी बात है कि वह ससुराल वालों को पटा कर चल रही है। बचपन से लेकर बड़े होने तक लड़कियों को यही तो सिखाया जाता है कि ससुराल जाना है, उनसे पटा कर चलना है। माँ बाप का घर तो पराया घर होता, बेटी को पराए घर की लड़की कहा ही गया है। इस परंपरागत परायेपन को अपनाने में इतनी तकलीफ क्यों? लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि माँ बाप को ही ठिकाने लगा दो, उनके मरने के पहले ही उनकी अर्थी तैयार कर दो। पुराने जमाने में लोग इसीलिए तो लड़कियों को हिस्सेदार नहीं बनाते थे और 4 गांव दूर ब्याहते थे। लड़के तो मरने तक इंतजार करते हैं, लेकिन लड़कियां तो जीते जी मार डालने में भी संकोच नहीं करती। वह कटाक्ष पर कटाक्ष करती जा रही थीं। उनकी बातों में कसैलापन तो था ही, आवाज़ में भी विक्षोभ भरा था। सारी लड़कियों को एक जैसा नहीं माना जा सकता है, लगता है आप प्रतिभा से नाराज़ हैं। नाराज नहीं, दुखी हूँ, बदनसीब हूँ। दुनिया में ऐसी लड़की होगी जो ससुराल वालों से अपने बाप को पिटवाए? मेरा सुहाग छीनने की कोशिश की है उसने मैडम जी। क्या? प्रतिभा ऐसा नहीं कर सकती, मैं नहीं मानती। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वैसे आप क्या, कोई भी नहीं मानेगा। वह ऐसी नहीं है, जरूर कोई और बात होगी। मैं अपनी लड़की को अच्छे से जानती हूँ या आप? तुम्हारी तीखी आवाज़ में, उन्होंने तीखी आवाज़ में कहा। पृष्ठ 86। आखिर बात इतनी कैसे बढ़ गई, आखिर मुझे पूछना ही पड़ा। इसी दुकान के कारण, वह बैठी तो है, आप पूछ लें। जैन मंदिर पर ऐसा तमाशा हुआ कि, कहकर वह अपनी आंखें पोंछने लगी, फिर स्वयं को संभाल कर बोली, इसके सास ससुर ने पहले तो पुलिस में झूठी रिपोर्ट लिखा दी। गुप्ता जी से कुछ कहा सुनी हो गई तो दामाद और समधी ने मिलकर उन्हें बुरी तरह से पीट दिया। गुप्ता जी इस सदमे और अपमान को सहन नहीं कर पाए, तभी से अस्पताल में पड़े हैं। बार बार अपना पल्लू संभालती और आंचल से आंसू पोंछती मिसेज गुप्ता बेहद विचलित दिखाई दे रही थीं। अपमान का घाव रिस रहा था। यह तो बहुत बुरा हुआ, गुप्ता जी जैसा सीधा सज्जन आदमी जो कभी किसी से जोर से न बोलता हो, फिर घर का मामला सड़क पर आ जाए। घटिया स्तर पर उठाकर इस तरह तमाशा करना, पुलिस और कोर्ट तक पहुंचना, मैं हतप्रभ थी। अरे हमारे मरने का इंतजार तो किया होता, हम तो देते ही, कोई हमारा लड़का तो है नहीं, और इंसान छाती पर रखकर तो ले नहीं जाता। पर अभी से हमें तुम निष्कासित कर दो तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, हमें भी तो जिंदा रहना है, छोटी लड़की की शादी करनी है। उनका क्षोभ व्यथा में डूबी आंखें, प्रतिभा का निश्चल चेहरा, उनकी सफेद पड़ती आंखें, उसका निष्कलुष व्यवहार, उसकी निष्कपट हंसी, मेरा मन मानने को तैयार न था कि प्रतिभा ऐसा निर्दय कदम उठा सकती है या ऐसी ओछी हरकतें करवा सकती है। जिस लड़की ने अपनी पढ़ाई व्यवसाय के लिए छोड़ दी हो, जो शादी के बाद भी अपनी खुशियों तथा जिम्मेदारियों को दरकिनार कर पिता का भार हल्का करने के लिए आती जाती रही हो, जिसने पिता की खातिर अपने ससुराल वालों को घर तथा शहर छोड़ने के लिए राजी किया हो, वह ऐसा करेगी? क्या ससुराल वालों के कहने पर प्रतिभा ऐसा कर रही है? उसका दिमाग तो नहीं फिर गया, बहकावे में तो नहीं आ गई? कहीं वे लोग तो पैसे की मांग नहीं करते? मेरा मन कड़वा हो गया था और व्यथित भी। लोग कहेंगे लड़कियां ऐसी ही होती हैं जैसी प्रतिभा। लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? पौराणिक काल से लेकर आज तक, सदियों से लेकर अब तक महाभारत में द्रौपदी को अपमानित होना पड़ा था। पुरुषों की महत्वाकांक्षाओं, सत्ता, शक्ति, मान अपमान, अभिमान के कारण पतियों द्वारा जुए में हारकर भरी सभा में निर्वसन द्रौपदी होती है, तो उधर रावण द्वारा हरण की गई सीता को राम ने निर्वासित कर दिया, तो अहिल्या को पत्थर बनना पड़ा। लड़कियां ही बनती हैं कारण, शिकार, समय, समाज और व्यवस्थाओं के बीच फंसी ये लड़कियां। और आज मैं प्रतिभा को देख रही थी जो अपने पिता के दुख और अपमान का कारण मानी जा रही थी, जबकि असली कर्ता उसके पिता थे। उसने तो कठपुतली बनने से इनकार कर दिया था और यही दुख का कारण था। फिर भी मेरे मन में संदेह और जिज्ञासा थी, सच्चाई की तह तक पहुंचने की चाह थी। दूसरा मन कहता, मैं कौन होती हूँ उनके बीच में पड़ने वाली? मुझसे तो दोनों ही अच्छी तरह से मिलती हैं, बात करती हैं, मुझे किसी को लेकर परेशान होने या बुरा मानने की क्या जरूरत है? करीब 2 माह पश्चात फिर अपने काम के सिलसिले में वहाँ से निकलना हुआ तो दुकान की तरफ मेरे कदम अनायास ही बढ़ते चले गए। दुकान बंद थी, ताला लगा था, सील बंद। शटर पर एक कागज चिपका था जिस पर लिखा था, कृपया ग्राहक नए पते पर संपर्क करें। क्या हो गया? कोर्ट ने ताला लगा दिया है? क्यों? बेटी ने मुकदमा जो ठोक दिया है अपने हिस्से के लिए, बगल वाले दुकानदार ने किंचित हंसते हुए कहा। आसपास खड़े 3-4 आदमी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। अपने अधिकार के लिए आजकल पढ़ी लिखी लड़कियाँ कोर्ट तक जाने लगी हैं, दुकानदार ने कुटिलता से कहा। लगा वह प्रतिभा के बहाने सारी लड़की जात पर कटाक्ष कर रहा था। पिता का भी तो दोष रहा होगा, मेरे मुँह से अनायास निकल पड़ा। पिता जीते जी अपनी संपत्ति कैसे देते? यह वाक्य को खींचते हुए बोला। समझ गई, पक्ष पिता का मजबूत था, समर्थन भी पिता को मिला हुआ था और सहानुभूति भी। दोषी लड़की थी, घृणा लड़की के प्रति थी, व्यंग लड़की के लिए था। पारिवारिक लड़ाई का मजा सार्वजनिक रूप से उड़ाया जा रहा था। सत्य जानने की प्रबल उत्सुकता के लिए मैं लिखे हुए पते पर जा पहुंची, और किसी का मामला होता तो शायद मैं वहीं से लौट पड़ती। चूँकि प्रतिभा का मामला था और उसके लिए यह तब सुनना जैसे मेरे अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा रहा था। पता नहीं उस दुकानदार की बातें मुझे अपने ऊपर चुभती क्यों लग रही थीं। शहर भर में चर्चा हो रही, कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंचा और मैं अनजान रही। जब हम दिए गए पते पर पहुंचे तो दोपहर के 3 बज रहे थे। धूप तीखी थी, गर्मी के कारण पसीना पसीना हो रहे थे। बाहर बड़ा सा पेड़ लगा था और उसी पर दुकान के नाम का कागज चिपका हुआ था। बैठक में बड़ी बड़ी रैक रखी थी, बेतरतीब सी, कहीं किताबों का ढेर था तो कहीं पत्रिकाओं का। किताबें न हो गोया कचरा घर हो, यह सब क्या बताएं साहब। मैंने देखा गुप्ता जी सूख कर आधे रह गए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई, आंखें अंदर धंसी, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। चिंता और अपमान आदमी को इस तरह जला देता है जैसे आग की लपटों से झुलसा हुआ हरा भरा वृक्ष। आखिर यह सब क्यों हुआ? क्या बताएं, औलादें जो न करवाएं। गुप्ता जी कराती हुई आवाज में वितिष्ठा से बोले, सिर्फ औलादें ही दोषी होती हैं? शैलेश ने उलट वार किया, ऐसी लड़की होगी दुनिया में? संपत्ति के लिए पिता को कोर्ट में खड़ा कर दिया। संपत्ति के लिए नहीं, अपने हक के लिए, अपने हिस्से के लिए। आप क्या चाहते थे? ईमानदारी से सोचकर बताएं, क्या उसे अपने पति तथा परिवार को छोड़ देना चाहिए? अपने परिवार की जिम्मेदारी वह कैसे निभाए? वह दोबारा किसके कहने पर और क्यों लौटी? मान लीजिए वह सबको छोड़कर आ भी जाती तो क्या आप उस पर विश्वास करते? आप उसके काम से खुश रहते? संदेह का कीड़ा आपके भीतर है गुप्ता जी, आपकी नीयत में खोट है। आपको बेटी का दर्द नहीं दिख रहा है, आपने उसे एक कंपटीटर की तरह देखना शुरू कर दिया है। आप चाहते हैं कि वह पहले ही की तरफ सिर्फ आपके लिए कमाए, काम करे। शैलेश गुप्ता जी के भीतर झांकने की कोशिश कर रहे थे। पृष्ठ 87। गुप्ता जी ने एक लंबी सांस भरी और खामोशी के इधर उधर देखने लगे। इस लड़ाई में लाखों रुपए का नुकसान हो गया, कोर्ट ने ताला लगा दिया है। हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठे रहते? जिंदा तो रहना है, इसीलिए जैसा भी बन पड़ा है यहीं से काम शुरू कर दिया। बिक्री तो ठप है, गोदाम में जो किताबें पड़ी थीं उन्हीं से काम चला रहे हैं। हमारा ही निर्णय हमारे पांव पर कुल्हाड़ी का वार कर बैठा। यही सब आपका लड़का करता तब क्या करते आप? आजकल लड़के भी तो माँ बाप को लात मार कर निकाल देते हैं। चूंकि प्रतिभा लड़की है इसीलिए आपने सारी बातों को दिल पर ले लिया है। क्यों नहीं आपने एक लड़के की तरह उसको सेटल किया, उसका हिस्सा दिया? दे तो दिया था। क्या शादी में खर्च किया? नकदी दी थी, जेवर दिए। यह सब क्या लड़के की शादी में खर्च नहीं होता? बहू को जेवर नहीं चढ़ाते आप? बहू का जेवर तो अपने ही घर में लौट कर आता है। गुप्ता जी नजरें छुड़ा कर बोले, वाह गुप्ता जी वाह, यहीं आकर आपकी सोच और संकीर्ण दृष्टि का पता चलता है। प्रतिभा के अंदर आपने कभी असुरक्षा का भाव देखने की कोशिश की? उसकी मेहनत का हिसाब लगाया? उसके उन वर्षों को गिना जो उसने इस दुकान में लगाए थे? उसे इतना बारीकी से क्यों सोचना था? आखिर में तो इन्हीं सबको मिलना था। यह सब कब? जब आप मरते तब ना, और अभी आपको 30 साल तक कुछ नहीं होना है। तब तक वह आपके यहाँ नौकरों की तरह काम करती रहे, ससुराल वालों के ताने सुनती रहे। शैलेश रौ में बोले, लेकिन यह सब बदमाशी हुई सो, पैसा बर्बाद हुआ। कब कोर्ट फैसला सुनाएगा और कब दुकान खुलेगी? आप ही जिम्मेदार हैं इसके लिए। कभी आपने पहल की अपनी तरफ से? हमारे मन से वह निकल चुकी है, इससे अच्छा तो हम बे औलाद होते, श्रीमती गुप्ता ने तड़पते हुए कहा। प्रतिभा चारों तरफ से कटघरे में खड़ी थी। वह पत्थर की तरह कठोर थी, बेईमान थी, धोखेबाज थी, अपने पिता की दुश्मन थी, परिवार का सर्वनाश चाहती थी। पूरा समाज उसे इन्हीं विशेषणों से अलंकृत कर रहा था। उसे चारों तरफ से कुचला तथा धुतकारा जा रहा था, गिराया जा रहा था। खड़े होने के पहले ही उसकी रीढ़ की हड्डी पर चोट की जा रही थी, ताकि वह जीवन भर खड़ी न हो सके और आत्मग्लानि में डूब कर भाग जाए या आत्महत्या कर ले। ये किताबें आपके पास कहाँ से आई? गोदाम में पड़ी थी। और प्रतिभा के हिस्से की? दुकान में बंद है। तो वह क्या कर रही है हमें क्या पता? आपको नहीं पता? भाड़ में जाए या चूल्हे में, हम जीते जी उसका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। उसके लिए हम मर गए और हमारे लिए वह, मिसेज गुप्ता ने घृणा से मुंह बनाते हुए कहा। क्या वे वही माँ बाप हैं जिन्हें मैंने पहले देखा था? इनकी सज्जनता के भीतर इतनी कालीख और कठोरता। आपने अपने को सही सिद्ध करने में तर्क पर तर्क दिए जा रहे थे गुप्ता जी और उनकी पत्नी। फिर महीनों तक मेरा जाना नहीं हो पाया। एक आदर्श प्रतिष्ठित धार्मिक परिवार का ऐसा पतित रूप देखकर मन क्षोभ से भर गया था। प्रतिभा के प्रति उनका कठोर रवैया भी मुझे उद्वेलित करता रहा। लेकिन आज प्रतिभा फिर सामने थी। उसी तरह हंसते हुए उसने स्वागत किया था, मगर वक्त ने उसे परिपक्व बना दिया था। उसके चेहरे पर बीती जिंदगी की छाप थी, उदासी थी, उद्विग्नता थी, माथे पर चिंता की लकीरें थी। इंसान बाहर वालों से हार भी जाए तो इतना नहीं टूटता जितना कि अपनों से जीत कर। पापा मम्मी से मिली थी आप? बहुत पहले। क्या कह रहे थे, क्या कहेंगे? पता नहीं कितनी देर तक हमारे बीच बेचैन खामोशी पसरी रही। हम लोग इधर उधर देख रहे थे, बात करने का बहाना ढूंढ रहे थे। ऊपरी तौर पर सतही लगने वाली लड़ाई गंभीर मुद्दे छुपाए हुए थी, जिन्हें सिर्फ पारिवारिक या व्यक्तिगत कहकर नहीं छोड़ा जा सकता था। मैडम, आप यकीन कर सकती हैं कि माँ बाप भी इतने कठोर हो सकते हैं? प्रतिभा ने मेरे चेहरे पर निगाहें चढ़ाकर कहा। संभवतः वह अपनी स्थिति साफ करना चाहती थी। मेरी गोद में 3.5 माह की बच्ची थी। इस बच्ची का ख्याल किए बगैर मुझे घर से निकाल दिया था। बाकायदा धक्के देकर। मेरे नाम जितना पैसा जमा था सैलरी के नाम पर वह भी ले लिया था, यह कहकर कि तुम्हारे लिए दुकान खरीद देंगे। मेरी खातिर इनका परिवार भी यहीं आ गया था, किराए का मकान लेना पड़ा, फिर इनकी भी नौकरी छूट गई। जब दुकान का बंटवारा हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि दोनों मिलकर इसी बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। राजेश मैनेजमेंट का काम देखते थे। पृष्ठ 88। मैंने पापा से कहा कि राजेश को जितनी सैलरी कंपनी देती थी उतनी तो मिलनी चाहिए, उसके लिए भी तैयार न हुए। फिर तो छोटी बड़ी बातें बढ़ती गईं। कहने को तो बहुत मामूली और तुच्छी बात लगती है, लेकिन मेरे पापा ही मेरा हक छीन रहे थे। उनमें कंपटीशन की भावना आ गई कि कहीं हम लोग उनसे आगे न निकल जाएं। मुझसे कहते कि मैं अपने ससुराल वाले को बहका रही हूँ। कभी कहते तेरे ससुराल वाले तेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। इन्हीं बातों पर विवाद बढ़ता गया तो उन्होंने इतनी गिरी हुई हरकत की कि मुझे बताने में भी शर्म आती है। वह क्षणों तक रुकी, फिर बोली। पापा का वह रूप देखकर मैं शर्म से गड़ गई थी। इतना बड़ा आदमी और ऐसा झूठ। राजेश और उनके मम्मी पापा की शिकायत कर दी कि वे दहेज मांग रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं। मैंने इन लोगों के खिलाफ बयान नहीं दिया तो नाराज हो गए। आखिर मैं झूठ क्यों बोलती? उन्हें लगता रहा कि मैं उनकी लड़की हूँ तो हर हाल में उन्हीं का साथ दूंगी, लेकिन जब मैं नहीं मानी तो धक्का देकर निकाल दिया था। तब ये लोग मेरे बचाव में आए। मैडम, हम लोगों के सर्वाइवल का सवाल था। हम लोग सड़क पर आ गए थे एकदम बेकार। जब सारी स्थितियां हाथ से निकल रही गईं तब मुझे ही आगे बढ़कर अपने लिए लड़ना जरूरी लगा। मेरे साथ चार लोगों का जीवन है, सभी का भविष्य जुड़ा है। कहाँ जाते, क्या करते? उन्हें तो 24 घंटों का फ्री का आदमी चाहिए था, मेरे रूप में जो तीन आदमियों का काम एक साथ करता था। इसके बाद भी वे शांत नहीं रहे, बल्कि इन्होंने तो वहाँ भी चालाकी से काम लिया। चुपचाप रातों रात गोदाम में से किताबें निकाल ली। आपने देखा वहाँ जाकर, उसकी बच्ची उसके पीछे खड़ी लगातार उसे खींच रही थी। गर्मी के कारण वह बेचैन थी, शायद प्यासी थी। किसी तरह हम लोगों ने यह दुकान खरीदी और इसी को जमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम, चाहे कितने भी कानून बन जाए, लड़कियों के लिए माता पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी में कुछ नहीं मिलने वाला। सदियों से चला आ रहा है यह समाज, है ना? यह इन कानूनों को भी ताक पर रख देता है। हम हर युग में मनु जिंदा रहते हैं, चाहे वह पिता के रूप में हो या अन्य रूप में। प्रतिभा आंसू पोंछते हुए बोली। सचमुच सब कुछ सूना सूना लग रहा था। खाली दुकान, बिखरा सामान, प्रतिभा का यूं खड़े खड़े रोना, उसे इस रूप में मायूस और हताश देखना, माता पिता का ऐसा निर्मम व्यवहार। और इधर व्यवसायी पिता ने मैजनीन फ्लोर पर जिस पर कोर्ट ने ताला लगाया हुआ था उसी के ऊपर एक शानदार खूबसूरत दुकान बनवाकर अपने व्यापार को दुगना बढ़ा लिया था। कंप्यूटर पर लिस्ट बनाई जा रही थी। जब कोई प्रतिभा के बारे में पूछता तो वह अपनी लड़की द्वारा किए कोर्ट को केस बताना न भूलते। वह यह भी न भूलते कि उनकी लड़की अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर अब मकान पर हक मांग रही है। देखा जाए तो इस बूढ़े पिता को तात्कालिक सहानुभूति तो मिल ही जाती थी, और जानते हुए भी कि यह समाज, रिश्तेदार, परिवार प्रतिभा का कदाचित साथ नहीं देगा, फिर भी वह अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती रहेगी। मैं हार नहीं मानूंगी, प्रतिभा कर रही थी। अपनों द्वारा किसी आदमी का कैरियर बर्बाद होते देख दिल जलता है। मैडम, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, न मम्मी पापा की विरोधी, फिर भी मैं अपने अस्तित्व और आत्मसम्मान के लिए अंतिम समय तक लड़ूंगी। यह मेरा अपना सत्य है, मेरा संघर्ष है, मेरी लड़ाई है। उसका अंत क्या होगा, हार या जीत? लौटते हुए मुझे प्रतिभा की आंखों में आंसू दिख रहे थे, पर उसका आत्मविश्वास भी ढाढ़स बधा रहा था। आकाश में बादल उमड़ आए थे, तेज हवाओं के साथ बूंदाबूंदी होने लगी थी। प्रतिभा एकटक आकाश की तरफ देख रही थी। उसके भीतर चलने वाली तेज हवाओं का शोर शायद बाहर की हवाओं में खो गया था। लघु कथा विडम्बना, लेखिका कुमकुम गुप्ता। स्त्री सशक्तिकरण पर भाषण देते हुए नीरजा का आत्मविश्वास स्पष्ट झलक रहा था। सभागार में बैठी स्त्रियों के साथ साथ पुरुष वर्ग ने भी भाषण की समाप्ति पर उसे सराहा। सारा हाल तालियों से गूंज रहा था। इसके संक्षिप्त एवं प्रभावी विचार सबको अच्छे लगे। सभी की बधाइयां स्वीकारते हुए वह घर जाने के लिए कार में बैठी तो जाने कितनी उड़ानें मन में चलचित्रों की तरह तैरने लगी। घर पहुंचते ही नकुल का गुस्साया चेहरा देखकर उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे पिघलने लगा था। कारण उसके मन में स्पष्ट था कि कार्यक्रम से लौटने में बहुत देर हो गई थी, जबकि उसने जाते वक्त बोला था कि वह 7 या 8 बजे तक आ जाएगी और इस समय 10 बज रहे थे। स्त्री सशक्तिकरण का एक और रूप में भी उसके सामने स्पष्ट हो चुका था। पृष्ठ 89। कहानी आवजो शीला रोहेकर। सुपरिचित कथा लेखिका शीला रोहेकर की प्रस्तुत कहानी सांप्रदायिक दंगों से अस्त व्यस्त और संतरष्ट आमजन की विवशता, घुटन और उनके टूटे फूटे जीवन में पसरे बीहड़ अंधेरों को प्रामाणिक ढंग से सामने रखती है, जिसे पढ़ते हुए पाठक को झुग्गी झोपड़ियों के बेहाल जीवन अनुभवों की भयावहता का एहसास होता है। लेखिका ने इसमें दंगों के दौरान और दंगों के बाद की बेबसी और पीड़ा को स्त्री नजरिए से उकेरा है। मैं तो कुछ नहीं जानती थी साहब, माँ कसम जी, बिल्कुल कुछ भी नहीं। हम पढ़े लिखे कहाँ साहब, पैदा कर दिए गए तो बड़े हो गए, बड़े हो गए तो यही शादी विवाह हो गया, फिर टाबरे हो गए जी साहब, 2 लड़के 3 लड़कियाँ। क्यों नहीं साहब, घर वाला है ना। उधर पांचसेरी बाजार में आप जैसे बड़े लोगों का सौदा सुलभ ढोने का काम करता है, मजदूरी क्या साहब, बस खाने लायक जुगाड़ हो जाता है। 7 जनों का पेट पालना कितना मुश्किल है आप ना जानो। अरे कुतिया तक पिल्लों से दूध छुड़ाती भागती है, तो हम तो जिनावर से समझदार ही हुए, पूरा पेट कहाँ से पाल सके। पूरी तरह तो नहीं पता, फिर भी सबसे बड़ा हसन होगा कोई 12-13 का, फिर आमीना 10-11 की, बड़ी सीधी लड़की है साहब, कुलसुम होगी कोई 8-9 की, और मेरी हसीना है ना साहब सबसे छोटी, बड़ी शैतान अपने अब्बू की जान, 3-1 बरस की साहब। हाँ साहब, हसीना से बड़ा एक लड़का है गफूर, 5 बरस का, रिरियाता छोरा। अब उम्र का सही पता तो कौन रखेगा, स्कूल तो जाते नहीं थे बच्चे, साफ कपड़े कहाँ से जुटाए, सो हसन तो अपने अब्बा के साथ जाता था, बाकी तो साहब इस साबरमती की रेतिया पर आवारा गर्दी करते, मादर साहब बहुत गालियाँ खाते पीटते, पर हराम की औलाद खाने के एंड टेम पर गिद्धों की नाई आ टपकते, मरों को कितना खदेड़ो कि अभी तुम्हारे मुँह में झोंसने को नहीं बना है, लकड़ी गीली है, पर कहाँ सब खाने की टेर लगाते, जैसे मुझे ही डकार जाएंगे हराम के जने। ना साहब ना, अब ए मुए लंडूरे क्या और कितना खात कमाते, मांग मूंग कर कभी 98 रुपया ले भी आते तो वह बित्ते भर का गफूरिया फूंकता था बीड़ी। मैं तो इसी नेहरू पुल के इस सिराने बैठती थी साहब, कभी काकड़ी को कभी बेर, कभी नींबू तो कभी खरबूजे, जो मिला साहब थोड़ा बिकत लियो, बेचा 2 पैसे गांठ में दबाए और टुकरिया उठा के चली झोपड़ी में भाड़ झोंकने। ऐसे में साहब मैं क्या जानूं कि मादर क्या होने वाला है। पृष्ठ 90। हरहरा के उठे थे सब, गोमती सायरा नत्थू छोटू हमीद और तो और साहब लंगड़ा रफ्फू भी ऐसा भागा जैसे पीछे कोई आग लगी हो। आग ही तो लगी थी साहब, टोकरी ठोकरी पता नहीं कहाँ गिर गई, हुप 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 छाती धड़की साहब, दिल तो जैसे उछल उछल कर ए बाहर ए अंदर ए बाहर कसकर पकड़ी थी मैं अपनी छाती, और धोती तो साहब ए जाओ ओ जा, तब भी सच्ची ना पता था कि मर्दद्दे सभी भागे क्यों जा रहे हैं। साहब वह कहानी सुनी होगी आपने जरूर, हाँ खरगोश और आकाश की, पत्ता टपका सो जाना कि आसमान गिरा, वो भागा उसके पीछे पीछे ए गया वो गिरा, जिसने पूछा वह भी भागते बना। सो साहब क्या हाथी क्या ऊंट क्या गधा क्या घोड़ा, सो मुझे हुक हुक में यही याद आ रहा था, ससुरे कहीं पत्ते की टप पर तो नहीं भागे जा रहे। पर ना हो साहब, सचमुच तो आग लगी थी, 1-2 आदमी हो तो बताऊं, अरे पूरी दुनिया जहान का मानुष उलट पड़ा था, पता नहीं कहाँ को भाग रहा था, क्यों भागे जा रहे हो, क्या हो गया है, आदमी तो थे नहीं साहब की बोलते, सब के सब डर के डेरे बन गए थे साहब, अपने अपने टावरों को गांठ की नाई बांधे सब भागे जा रहे थे। पागलों से झोपड़ियों से निकलते थे और इस मोई रेत पर एक एक भागते जाते थे। जानो ना साहब कि रेत पर कैसे तो पांव खसकते हैं, और तब तो और भी ज्यादा, जब मन में कौन ब्रह्म राक्षस खाऊं खाऊं करता दौड़ा चला आता हो। हसन और उसकी अब्बू पता नहीं आए कि नहीं, मैं तो बाकी चारों को हाँक कर जहाँ सब भागे जा रहे थे भागी साहब। क्या बताऊँ साहब, मैंने खुद ही अपनी इन आँखों से कईयों को रेत के अंदर सांप के चूहों की नाई धंसते देखा। कुछ तो सांप साबरमती के छिछले पानी के पाताल में जाकर छिप गए। अब मैं बाल बच्चेदार औरत पानी या रेत में इतने जल्दी कैसे छिपती? मेरे छोटे छोटे मादरचोद बच्चे फसक ना जाते? सो साहब, उधर वो ऊपर की ओर भेखड़ों जैसी जमीन दिखे है ना, ही वो ही जिस पर कुछ पौधे और घास वास दिखे हैं, एक टूटी सी दीवार भी है, बस वही हम छिप गए साहब। सबको मैंने आवाज़ दी, पर साहब मैं जानती थी कि बच्चे डर के मारे चुप्पे बैठे होंगे साहब। 12-13 जितने थे हम सब वहाँ, तब मैंने पूछा था साहब, माँ कसम तब तक मैं कुछ भी नहीं जानती थी। कहीं किसी रेल में किसी ने किसी को मारा था साहब, बताते हैं बहुत थे, जिंदा जलाया था साहब, इसलिए ऐसा हुआ था। इस शहर में ऐसा तो होता रहता है, यह मैं बचपन से देखती आई हूँ। अम्मी अब्बू भी काटे गए साहब जब मैं बच्ची थी, भाई भी नहीं मिला, चच्चू ने बड़ा किया, इसी रेत पर सब रहते थे साहब। बारिश में किनारे डाल लेते झुग्गियाँ, साबरमती का पानी बस 2-3 माह छलकता है साहब, वरना यही चांदी सी सफ़ेद रेत। रेत ही हमारे माँ बाप, ईमान, धर्म, दुनिया जहान, बहिष्ठ दोजख। धर्म तो साहब मुसलमान पर वह होता क्या है, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना और मरने पर गाड़ देना, यही ना। हमें नमाज मस्जिद कहाँ नसीब, ईद को जाने बच्चे मेरे, नाला धुलाकर धुले कपड़े पहना दें और 2-5 रुपया खर्च कर दें, बस हो गई ईदी और त्योहारी। पर साहब वह तो सब कर रहे हैं, यह पास वाले संतोष और नत्थू और राम जी और रामरति, हम भी तो दिवाली मनाते हैं साहब। हमारे यहाँ ऐसा मेरा तेरा नहीं होता, जब सुख दुख साझा तो ईद दिवाली क्यों नहीं? पर यह बवाल तो न रामदई का था न अब्दुल मियाँ का, पता नहीं यह कैसा त्यौहार चला है आजकल साहब, कि इसमें एक दूसरे को गले लगाते हैं तो खून के फव्वारे छूटते हैं। थर थर कांपती नूरा ने बताया साहब, दंगा हो गया है। भागते भागते ख्याल तो आया था कि हो न हो यही बवाल होगा, पर साहब सच्ची कोई भी भनक नहीं थी पहले से, वरना चेहरे तो छाड़िए, जिनावर पंछी तक तन जाते थे पहले। पहले से ही पता लग जाता था कि बवाल आ रहा है, छिपो भागो। साहब आप मानेंगे नहीं, मैं बच्चों को पेट से कम देती थी खाना हमेशा। एक तो तंगी ऊपर से आए दिन होता रहने वाला यह मादर जंजाल, हो जाए तो 2-3 दिन बिना रोटी पानी के रहे रह सके ना बच्चे, वरना पूछो कि किसने मारा भाई तो कहे कि आदम जात ने नहीं भाई मादर, भूख ने कत्ल किया, यह कोई बात हुई? इसीलिए साहब मेरे बच्चों को तो भूखे रहने की आदत है। क्या बताएं, वहाँ छिपे छिपे हमने किसे किसे नहीं याद किया, हर बार ही तो करते थे साहब, बच भी जाते थे। अल्लाह रसूल, रणछोड़ राय जी, राम जी, सीता मैया, कालूपुर के पीर बाबा, न जाने कौन कौन सी मन्नतें मांगी साहब, पर इस बेर तो ना जाने कैसी आधी थी जो इन सबसे बड़ी हो गई, किसी मंदिर मस्जिद की चमक नहीं चली। और वो देखो वे चले आ रहे थे, कैसी तो तलवारें चमक रही थीं साहब, लाठियाँ और टूटी बोतलें भी माँ कसम तलवारें बन गई थीं, तभी तो चमक वही थी, चमचम चमचम। कहाँ छिपे, कहाँ घुसे, कौन बचाए? ओ माँ, अरे अब्बू, ओ करीम, मदद कर, बचा ले तो तेरे सजदे करेंगे, बचे रहे तो तेरे दरवाजे पर माथा नवाएंगे, बच गए मेरे रण छोड़ राया तो 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, बस अब की बार बचा ले, सुन ले हमारा कॉल। साहब बच्चों को समेटा और भागे वहाँ से जहाँ छिपे बैठे थे, चली आ रही थी लहरें, खारी ऊंची कद्दावर भयानक, यह भी नहीं जाना कि कौन साथ आया और कौन छूटा। सच्ची साहब दिल थोड़े ही बचा था भीतर, धड़कता होता धक धक तो पता नहीं चलता कि हाँ भाई है जगह पर। पृष्ठ 91। बिना दिल का खोखल समेटे बैठी रही थी जब देखा था वह सांप। अब इतनी दूर से तो क्या पहचानती किसी को, और वह अभी आधी की ऐसी घुमरी में। साहब, सुना है कि खुदा की ताकत को ललकारता शैतान पैदा हो गया था, फिर ललकारने वाला अपनी ताकत को वजनी ही समझा होगा। खेल उसका चले न चले, वह मुकाबला करने पर उतारू तो हो ही जाता है ना। अब ये सुनी समझी बातें भी सब धूल पत्थर हो गईं। इस बवाल ने शैतान को भी ललकार दिया साहब, सच्ची। सब धुधला धुधला था, एक तो स्यास सांच और दूसरी वह चिंघाड़े। मैं शैतान से भी बड़ा, बहुत बहुत बड़ा। ठीक से बूझ नहीं रहा था साहब कि कौन चीखा था जब टांगे चीरी गई थीं, कौन दरका था जब पेट फाड़ा गया था, कैसे कोई धुआं हो गया था जब भड़भड़ जलता भागा था, किसने लिए थे 100 जन्म मरते मरते, कैसे गिरा था कोई कतरा कतरा, कुछ नहीं पता साहब, कुछ नहीं। माँ माँ, अम्मी अम्मी, खुदा ईश्वर, चीखों चिल्लाहटों से ऊपर भी कोई कुछ सुना पाता है जब खुदे ही पाथर की नाई पसरे पड़े हो? नहीं ना, फिर मैं कैसे सुनती? अरे साहब, ये औरत जात है न मादरचोद, बड़ी बेशर्म, उग आती है यहाँ वहाँ, बढ़ जाती है इधर उधर, फैल जाती है ऊपर नीचे, तब साहब ऐसे दंगे होते हैं जो उन्हें छाट देते हैं। हाँ साहब, किसी की छातियाँ, किसी के कूल्हे, किसी की नाक कान आँखें बाजू, तो किसी की कोख। साहब, सारी काट छाट तो औरत सहन कर ले, पर कोख की काट छाट कैसे सबर करे? मरद ने रखा है कभी किसी माकसम मरद का बीज अपने कोख में? दी है अपनी देह किराए पर कि भाई पनपो, फूलो फलो, मुझे निचोड़ो, मेरी छातियों का दूध चूस कर कड़ियल जवान और मरद बन जाओ ताकि एक और कोक को छाट सको। साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, बोलो। हम औरत जात माँ बनना नामंजूर कर दें तो ये मरद के बच्चे कहाँ से बिलबिलाते बाहर आएंगे? लेकिन ऐसा होता है कहाँ साहब? यही औरत सबसे पहली चाहती है कि बीज पनपे। देखा साहब, देखा, ऊपर वाले ने भी क्या काट बनाई है। वह तो बैठा बैठा यही कह रहा है कि भाई मैं कौन होता हूँ मारने वाला, आप ही पैदा करते हैं और पैदा हुओं से मरते हैं। तो यह भी खूब रही, सब गोलमाल। किसने मारा? मरद ने। कौन पैदा हुआ? मरद। मरता कैसे कैसे रिरिया के मरा, यह तो मेरी समझ में आता है, लेकिन यह हिसाब समझ नहीं आया साहब कि बेरहमी का ताज पहनने के वास्ते किसने किसको कैसे तिल तिल मारा। हाँ साहब, थक जाती हूँ बोलते बोलते, कहते हैं जैसे बंदे की सांसों का हिसाब होता है वैसे ही उसके हरफ का भी हिसाब होता है। कहीं ऐसा न हो कि मेरे हरफ बीच में ही ख़त्म हो जाएं, तो जैसे मैं बोलना चाहूँ कुछ और आधे जुमले पर मेरे हरफ ख़त्म। उस नन्ही सी जान के हरफ भी ऐसे ही पूरे समझो साहब। डर से क्या साफ दिखे हैं और डर में क्या साफ सुनाई दे हैं, शायद बच्ची की फराक को तलवार से अटकाकर खींची होगी साहब। हमारे गरीबों के पास इतने पैसे और बखत कहाँ साहब कि हम उन्हें चड्डियाँ पहनाएं। बच्चे टट्टी पेशाब करें तो उन मुँहों चिथड़ों को धोएं, साबुन के पैसे खर्चें, फिर पानी की टोटियाँ लगी हैं क्या जो खोलो और काम निबट लो। पीने की मटकी के लिए वो उधर कॉलोनी तरफ जाना पड़े है साहब, 2 घंटे किधर नहीं गए, लाइन में लगे लगे। साहब, गरीब की जान पीछे सब लग लेवे हैं, ऐसे में उस मरी चड्डी का क्या फैशन? मेरी हसीना भी नहीं पहनती जैसे उस लौंडिया ने नहीं पहनी होगी, फिर क्या साहब? इन्हीं करमजली कोखों के जने अपनी धोती पैंट पैजामा कसते एक एक कर बाहर निकले और अंधेरी होती शाम को चमकती रेत पर उनकी वैशी हंसी मचती रही साहब, माँ कसम। रात थी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उकड़ू बैठे बैठे पैर सो गए, फाड़ फाड़ कर अंधेरे को ताकती आँखें चिपचिपा गईं, छाती को फोड़ कर निकलने चाह रही रुलाई को दबाते दबाते मुंह से बस ला रही टपकी साहब, फिर भी मन दौड़ना चाहता था। घनी रात में हम सब 2-3 जनी उठी जैसे साया उठता है, वहाँ तो कुछ भी नहीं था साहब, सच्ची। कुछ लोथड़े सा रेत पर चिपका था जिस पर ढेरों चींटियाँ जमी थीं, चांद के उजियारे में बस इतना ही दिखा। गीता, रामरती, गुलाबो सबने उसे देखा जैसे मैंने देखा, और फिर वे सारी की सारी पता नहीं क्यों मुझे चिपक कर रोने लगी साहब। मैं भी तो रो रही थी, किसी की तो बच्ची होगी बेचारी। हाँ साहब, सब तो मेरे साथ थे, पर ऐसी तो आंधी, ऐसा तो तूफान, इतनी तो अफरा तफरी कि बच्चे इधर उधर भाग गए, मुए पता नहीं कहाँ बिला गए हैं, कोई खाना खाए नहीं आया। बुला बुला कर थक जाती हूँ, तो साले रेत के भीतर घुस जाते हैं, शायद दूसरों को देखा है ना, रेत पानी हवा में बिलाते तभी तो अपनी अम्मी को परेशान कर रहे हैं। वैसे भी मैं इन नासपीटियों से भर पाई हूँ, ऊपर से झुग्गियों वाले चाय नहीं लेने देते, जब भी पेशाब पानी के लिए टावरों को बुलाने लाने बाहर निकलो, नहीं कि बस टगर टगर देखा करते हैं और कैसा तो चेहरा बना लेते हैं जैसे अभी रो देंगे। बवाल तो ख़त्म हो गया ना साहब, पता नहीं ऐसा भी क्या डर जो हसन और उसके अब्बू भी अब तक नहीं आए इस मरी टूटी झुग्गी को उठाने, पता नहीं। साहब ये मेरे फोटू बोटू खींच रहे हो, और जो है सो मैं बोलूं तो इस काले काले भोंपू को मेरे सामने ला देते हो क्यों? अच्छा टीवी में भरोगे, मेरी फोटो भी दिखाओगे? साहब बड़ी मेहरबानी, आपके बच्चे जीते रहें, दूधो नहाएं पूतो फलें साहब, पर ज़रूर से दिखाना, मेरे बच्चों को टीवी देखने का बड़ा शौक है साहब, जब अपनी अम्मी को देखेंगे तो पता है मुझे ज़रूर आ जाएंगे वापस, चाहे कहीं छिपे हों आ जाएंगे साहब। जा रहे हो साहब? हमारे अहमदाबाद में जाने वाले को कोई जा नहीं करता साहब, बड़ा बुरा माने हैं, वापस बुलाना है न साहब जाते हुए को? जैसे मैं झुग्गी के बाहर निकल आओ आओ करती हूँ अपने कर्मजलों को, वैसे ही साहब आपको भी वापस लौटने को कहती हूँ, जिससे जब आप दोबारा लौटेंगे तो मेरी इस टूटी झुग्गी के कोने में मैं हसन और उसके अबू के साथ अपनी अमीना कुलसुम और गफूरे के साथ और साहब हसीना को गोदी लेकर एक अच्छी सी फ़ोटो खिंचवाऊँगी, इसीलिए साहब आओ जो फरी फरी आओ जो, बार बार आना।